मैं कुछ दिनों से परमेश्वर से काफी नाराज था, एक हकीकत बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं कुछ सवाल पूछ रहा था और कुछ बातों को जानना चाह रहा था और समझना चाह रहा था। कुछ समय पहले मैंने आपको सिखाया था कि हमें सबका आदर करना चाहिए, सिखाया था, खास रूप से मसीही लोगों का, चाहे वो किसी भी चर्च का क्यों ना हो। और मैंने आपको कहा था कि स्मार्टनेस इसमें है कि हम सबका आदर करें, क्योंकि जो अनजान व्यक्ति हमें मिलता है हो सकता है कि वो मसीही हो, जैसे एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन में और भीड़ वाली जगहों में बहुत सारे लोगों से हम टकराते हैं और हमें नहीं पता होता है कि विश्वासी है या नहीं है, लेकिन विश्वासियों का आदर करना चाहिए क्योंकि वो इब्राहिम की संतान है। तो हम एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं आज। कहाँ से शुरू करो, लेफ्ट से या राइट से? आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं उस इंसान की तरफ देख के आप उनको बोलिए, पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, वी आर गॉड्स मास्टरपीस, है ना, अंग्रेजी में। और हिंदी में कैसे बोलेंगी कि हम परमेश्वर की हस्तकला है ना। तो आप लेफ्ट में जो बैठे हैं उनको देख के बोलिए कि आप परमेश्वर की हस्तकला हो, या यू आर ए मास्टरपीस ऑफ गॉड। ओके, इस बात को भूलना नहीं, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक हकीकत है। अगर आपके लेफ्ट में जो इंसान बैठा है या जो व्यक्ति है, बैठा हो या बैठी हो, अगर वो मसीही है, विश्वासी है, परमेश्वर की संतान है, तो वो 100% परमेश्वर की हस्तकला है। ही और शी इज ए मास्टरपीस ऑफ गॉड। अब लेफ्ट में जो थे, जिन्होंने सुना, आपको सुन के अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, एक बार फिर से बोलिए, उन्होंने ठीक से नहीं सुना होगा, अच्छा लगा सुन के? मतलब ये बात आप पहले से जानते थे, लेकिन एक बार जब आपको फिर से सुनाया गया तो अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लगा ना। अब आप जो राइट में है उनको पलट के क्या बोलेंगे? एक मिनट, हम सोचते हैं क्या बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर एक्नोलेजिंग द ट्रूथ, सत्य को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। बोलिए, ऐसा कोई नहीं कराता ना चर्च में, आमतौर पर ऐसा नहीं करा रहा है ना। अब क्योंकि उन्होंने सत्य को एक्नॉलेज किया है, आप भी एक बार उनको बोल सकते हैं, लेफ्ट वाले राइट वालों को। इस बात को ना भूलिए, हम सब परमेश्वर की मास्टरपीस है, और जिनसे हमारा उठना बैठना होता है, अगर वो मसीह है तो परमेश्वर की संतान है, आदर और प्यार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था इब्राहिम से कि जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, और जो तुझे कोसेगा यानी आदर नहीं करेगा, निरादर करेगा, वो श्रापित होगा। तो हम उससे बच कर रहेंगे। लेकिन आज हमारा विषय वो नहीं है, ये तो सिर्फ वार्म अप करा रहा था मैं, जो कठिन विषय मैं आपसे एक साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि हम लोग लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, और पिछले संडे चिताली ने प्रार्थना के विषय में आपको बताया, उससे भी दो संडे पहले मैंने भी आपको याद होगा यशायाह नबी के पुस्तक 62 अध्याय में से हमने प्रार्थना के विषय में कुछ जल्दी में सीखा था। इफिसियों की पत्री में चलते हैं 6 अध्याय में, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6। इफिसियों की पत्री का 6 अध्याय में 18वां पद, यहां से पिछले संडे भी आप लोगों ने अध्ययन किया था, यहां पर लिखा है हर समय और हर प्रकार, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहां पर प्रार्थना के विषय में आपको कुछ जानकारी भी मिल रही है और कुछ आदेश भी दिया जा रहा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। और आज हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह नहीं करेंगे। आपको याद होगा अक्सर जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो पास्टर राहुल आपसे कहते हैं कि थोड़ी देर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा समय करते हैं। और यहाँ पर क्या कहा है आपसे कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो आपकी प्रार्थना और आपकी विनती कैसी होनी चाहिए, आत्मा में होने चाहिए। आत्मा के बिना अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रार्थना सफल नहीं होगी। इस प्रार्थना के लिए आत्मा की जरूरत है। और हम क्या करते हैं, अक्सर मैं हर संडे प्रार्थना बहुत ध्यान से सुनता हूं। तो ध्यान देखिए, सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, आपकी प्रार्थना मैं भी ध्यान से सुनता हूँ। जवाब मैं नहीं दे सकता, परमेश्वर दे सकता है, लेकिन सुनता मैं जरूर हूँ। और मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं प्रार्थना में। और आज मैंने सोचा कि आपको बताऊं, अधिकतर लोग हमारे चर्च में प्रार्थना में क्या करते हैं कि उनके पास रस्सी होती है बांधने के लिए, हर जगह हर चीज को वो बांधते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपके प्रार्थना में आप शुरू करते ही बोलते कि हम उस चीज को बांधते हैं, फिर वहां से शुरू होती है प्रार्थना। या फिर हम कहते हैं कि हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, है ना, कहते हैं ना, परमेश्वर को हम जताते हैं कि ये ऐसी वैसी प्रार्थना नहीं है, हम सब एक मन से, सबसे आगे पूछते तो नहीं है, लेकिन हम अस्सुम कर लेते कि सब मेरे साथ एक मन है इस बात में जो मैं कहने जा रहा हूँ। अभी अभी बात कही नहीं, अभी दूसरों को पता भी नहीं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अस्सुम कर लेता हूँ कि वो मेरे साथ सहमत होंगे। उनको तो होना ही पड़ेगा, एक ही चर्च में है, है ना। हम ऐसा अस्सुम कर लेते, फिर परमेश्वर को बताते, देखो अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ वो हम सब एक मन से बोलने जा रहे हैं। फिर हम नॉन स्टॉप कुछ बोलते हैं, इसके बाद एंड करते हैं, क्लोज करते हैं, कैसे, यीशु मसीह के नाम से। और फिर हम चाहते हैं कि सब लोग क्या बोले, आमीन बोले, हम खुश हो जाते हैं कि प्रार्थना हो गई, अब परमेश्वर को सुनना ही पड़ेगा। तो हमारे मनों में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। एक्चुअली क्या है, एक मैंने फिलोसफी में सीखा था बहुत सालों पहले, मतलब यंग डेज में, कि द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ट्रूथ। ये क्या है कि एक विषय को लेके जो सबसे पहले हमने सीखा ना, वो उसको निकालना, दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। तो प्रार्थना को लेके शुरुआत में हमने जो कुछ भी सुना है या दूसरों को प्रार्थना करते हुए हमने सबसे पहले जो देखा ना, वो हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि वो बात, कि उसको करोश करोश के निकालना पड़ता है। तो शुरुआत में क्या है कि सबने सुना है कि हम अपने अधिकार में रह के बोलेंगे सब, क्योंकि आप लोग जब प्रार्थना करवाने के लिए आते थे तो प्रार्थना करने वाला, जैसे मैं या रीना, हम लोगों ने अधिकार के साथ बीमारी को निकलने के लिए कहा, तो आपने सोचा कि यही प्रार्थना है, यही एकमात्र प्रार्थना है। जबकि इफिसियों के पत्री में क्या लिखा है, हर प्रकार की प्रार्थना और विनती, तो हम उसको छोड़ देते हैं। पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोला, हर प्रकार की प्रार्थना और विनती भी करो। तो हम चलते हैं, ये जो बांधने की प्रक्रिया हम करते हैं ना, वो हम देख लेते कहां पर है। देखे मत्ती का सुसमाचार का 18वां अध्याय में हम चलते हैं और हम प्रार्थना थोड़ा सा ठीक से करेंगे आज, ठीक से नहीं, आत्मा में करेंगे। मत्ती 18 का 18 सबको मालूम है, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम बांधना शुरू करते हैं, है ना, दाएं बाएं आगे पीछे हर चीज को हम बांधते हैं। ये हकीकत है ना, हम प्रार्थना में हर चीज को बांधते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ भी बंधा हुआ नहीं है। अगर आपने बांध दिया है वो बंधा हुआ रहना चाहिए, हाँ या ना। अब आप मेरे साथ सहमत नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ सहमत होना है, ठीक है। अगर मैंने एक चीज को बांध दिया है वो कम से कम कुछ समय तक तो बंधा रहना चाहिए, जब तक दूसरा उसको नहीं खोलता, नहीं। प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम बांधोगे वो बंधा रहेगा और जो कुछ तुम खोलोगे वो खुला रहेगा या खुल जाएगा। अच्छा जी, तो हर चीज में हर बात में मैं बांध रहा हूं, वो कुछ नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों है, तो कुछ ना कुछ बात होगी ना, क्यों, क्योंकि हम उस बात को पूरी रीति से समझ नहीं रहे। हमने इतना देख लिया कि जो कुछ तुम बांधोगे बंदा रहेगा, अच्छा जी रस्सी कहाँ है, मैं बांधता, बांधना शुरू कर, रस्सी लेके फिरते हैं, दोनों जीवन में दो दो रस्सी होती है सबकी, शुरू प्रार्थना में बांधना शुरू करते। लेकिन प्रभु ने उसके साथ एक और भी बात कही, फिर मैं कहता हूँ, तो ये जो पहले जो प्रभु ने कहा ना उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। प्रभु ने कहा कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। तो हम लोग इतने सारे लोग मिलके एक मन होकर जो मांगते हैं वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए ना। और हम प्रभु को जता के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सब एक मन होकर, तो हो क्यों नहीं रहा, तो कुछ मिसिंग पार्ट है इसमें। प्रभु ने तो दो जनों के लिए कहा था, इस चर्च में तो 85-90 लोग बैठे हैं इस समय, और हम प्रार्थना में चलो सारे सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग सो जाते हैं प्रार्थना में, तो हम मान के भी चले कि 50 लोग हमारे साथ एक मन है, तब भी हो जाना चाहिए। क्यों, मैंने सही बोला ना, कुछ लोग सो जाते हैं, आपकी प्रार्थना इतनी खूबसूरत है कि लोग सो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा क्यों है, क्या बीच बीच में हमें देखना तो चाहिए ना, आज सब लोग चुप हैं। हम एक चर्च है, एक कलीसिया है, एक संगति है, और हम इस गलतफहमी में आगे को नहीं जा सकते ना कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जी, ये हमेशा हालेलुया का नारा मैं लगाऊं और आप ही मेरे साथ लगाएंगे जैसे पंजाब में होता है ना, नहीं, हमें देखना भी चाहिए कि हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं। अगर हमारी प्रार्थना सहमति के साथ है, एक मन हो के हम एक चीज मांग रहे हैं, तो वो फिर मिलना चाहिए ना, क्योंकि यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, किसी और व्यक्ति ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा कि अगर दो जन किसी एक बात को लेके एक मन होके प्रार्थना करेंगे, नहीं प्रार्थना करना भी नहीं कहा, प्रभु ने कहा मांगो, तो सिर्फ मांगने से मिल जाना चाहिए ना। तो कितनों के पास, आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने या और मेरी पत्नी ने या मैं और मेरे भाई ने एक मन होके एक चीज को मांगा और मिल गया, कितने लोग कह सकते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही कम ना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि उन जिन्होंने अभी थोड़ा सा हाथ खड़ा किया सोच भी रहे कि मिलाता है क्या, 100% मिलाता ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आगे कर रहा, हाँ हाँ मिलाता, ओके, तो 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा किया, तो बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमें जानना नहीं चाहिए, तो उसको समझने के लिए एक और पद पढ़ना होगा, कौन सा पद है, 20वां पद में लिखा है कि क्योंकि, और जब आप बाइबल में क्योंकि शब्द को पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है, जो पहले आपको बताया गया है उससे ये जुड़ा हुआ है, जो आप कहने जा रहा है उससे जुड़ा हुआ है। प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम बांधोगे वो बंधा रहेगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो खुला रहेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में रहकर एक मन होके पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि क्या, क्योंकि जहां दो या तीन जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। ठीक है, प्रभु ने कहा कि दो जन काफी है, चलो एक एक्स्ट्रा रख लो तीन, अगर आपको लगता है कि दो कम है तो तीन, यहां में तो 90 लोग हैं। तो प्रभु ने कहा दो या तीन जन जब इकट्ठा होते हैं कैसे, कहीं लिखा है कि चर्च में लिखा है, प्रार्थना सभा में पढ़िए, पढ़ के देखिए, ऐसे मुंडी मत हिलाइए, देखिए, हो सकता है कि पास्टर जेम्स गलत बोल रहा हो, ऐसे कहीं लिखा है, सभा में, प्रार्थना सभा में, घर में, फेलोशिप में, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। प्रभु ने कहा कि जहां दो जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, तो ये जो बांधना बूंदना जो है और खोलना जो है और एक मन होके जो मांगना है वो सब कुछ इस बात पर है कि आप उसके नाम से इकट्ठा हुए हैं या नहीं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब तुम मेरे नाम से इकट्ठा हो तो मैं तुम्हारे बीच में हूं। बात समझ आई, तो चर्च में इकट्ठा होना काफी नहीं है, प्रभु के नाम से होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि प्रभु के कारण, प्रभु की वजह से जो कुछ यीशु मसीह है इस संसार में, उस कारण या उसने मानव जाति के लिए जो किया है उसके कारण अगर हम इकट्ठा है, यानी हम इस बात को समझते हुए उस जगह पर दो जन इकट्ठा है, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। उसके बाद अब आप 19वां पद को पढ़िए, आप प्रभु के नाम से इकट्ठा है और यानी प्रभु आपके बीच में है, और प्रभु कहता है कि दो जन पृथ्वी में, कहां में? पृथ्वी में। प्रभु का, प्रभु कहां होता है? यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन उसने कहा कि जब तुम मेरे नाम से इकट्ठा हो तो मैं तुम्हारे बीच में हूं, यानी वो भी पृथ्वी में है। ठीक है, तो मैं उदाहरण, आज रीना नहीं है तो मैं और पास्टर राहुल, ठीक है, दो जन काफी है ना। चलो पास्टर अमन को भी ले लेते, तीन दिन, दो या तीन, तो दो जन एक साथ बैठे हैं, मैं भी हूँ, ट्रायंगल बन गया। अब हम तीनों के बीच में अगर यीशु मसीह है, और ये अगर शब्द मैं लगाता हूं जानबूझ के, ये देखना जरूरी है, तो प्रभु ने कहा कि दो जन सहमत यानी एक मन होके कुछ मांगेगा तो किसके साथ सहमत होना होगा? जो बीच में है। और हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से सहमत, एक मन हो गया, अच्छा जी, अच्छा हम ऐसा करते हैं, एग्रीमेंट में आ जाते हैं, हम ये चीज मांग लेते हैं। नहीं नहीं, प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि जब तुम इकट्ठा होते ना, मैं तुम्हारे बीच में हूं, तुम्हें किसके साथ सहमत होना है? मेरे साथ। तो हम जो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं ना कि हम एक मन होकर प्रभु मांग रहे हैं, तो किसके साथ? अपने आप से या दूसरों से? नहीं, प्रभु के साथ एक मन होकर। अब ये कैसे हो सकता है? प्रभु के साथ सहमत होके कैसे प्रार्थना करेंगे हम? उसके लिए प्रभु से सुनना होगा ना। जब आप प्रार्थना में जा रहे हो तो प्रभु से सुनना होगा ना कि प्रभु की इच्छा क्या है, या फिर पवित्र शास्त्र में लिखा होना चाहिए। इन दोनों में से एक काम जरूर होना चाहिए। इसलिए हर संडे पास्टर राहुल आपको कहते हैं कि थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करो और समय लेके आराम से प्रार्थना करेंगे। लेकिन हमें क्या, जल्दी होती है, ठीक है, हम सब अपना अपना काम करते हैं, जो बोलना है बोल दिया, उसके बाद खुश, अब नेक्स्ट कोई आएगा सिखाएगा। तो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक मन होके प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के साथ नहीं। अगर मैं गौरव के साथ सहमत हो जाऊं कि अभी रात हो जाए और मांगूं तो हो जाएगा? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं भाई? हम दोनों एग्री हो जाए थोड़ी देर के लिए, और परमेश्वर से मांगूं कि मतलब सूरज यहां से हट जाए और चांद नीचे को आए, तो भाई हम दोनों एग्री तो हो गए ना, हम दोनों एक मन से मांग रहे हैं, क्यों नहीं मिलेगा हमें? क्योंकि प्रभु ने ये नहीं सिखाया कि तुम आपस में सहमत हो जाओ, प्रभु ने कहा तुम दोनों मेरे साथ सहमत हो जाओ, तब जो हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। तो हमारी प्रार्थना की शैली थोड़ा सा हमें बदलने की जरूरत है ना। अब हमने शुरू कहाँ से किया था? इफिसियों की पत्री में से। इफिसियों की पत्री में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, रटा हुआ होगा आप सबको, फिर भी अगर जाना तो जाइए। वहां पे लिखा है कि पौलुस ने ये इच्छा जाहिर की कि तुम हर प्रकार की प्रार्थना और विनती आत्मा में करो। तो शुरू, आपकी प्रार्थना शुरू कहां से होगी? आत्मा से होगी ना। आत्मा के बिना आप प्रार्थना नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना आप प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रार्थना जरूरी नहीं है कि परमेश्वर ग्रहण करें। पवित्र आत्मा की हमें सहायता चाहिए। दूसरी बात, मैंने कहा ना कि हम लोग ज्यादातर सिर्फ अधिकार के साथ बोलते हैं, होता कुछ नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अधिकार के साथ प्रार्थना करने का भी एक समय होता है, परमेश्वर से मांगने का भी एक समय होता है, विनती करने का भी एक समय होता है, निवेदन करने का भी समय होता है। इसलिए इस इफिसियों के पत्र में लिखा ना कि आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना करो और विनती करो, प्रार्थना भी करो। कभी कभी हमें परमेश्वर से फरियाद करने की जरूरत है। फरियाद समझते हैं ना, पेटिशंस। लेकिन हम क्या करते हैं हर जगह, हर समय में, हर बात में हम क्या करते हैं, अधिकार से बोल लेते हैं। हम सोचते हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि जो चीज परमेश्वर से रिक्वेस्ट करना है, जो फरियाद करना है, वो हम अधिकार से नहीं बोल सकते, वो परमेश्वर से मांगना होगा। जब हम परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करने का अवसर आता है, तब हम उस अधिकार से बोल सकते हैं। जब एक बीमार व्यक्ति हमारे सामने आता है और हमसे कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तब हम उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रभु ने दिया है। लेकिन हर जगह वो अधिकार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अधिकार इस्तेमाल करने की एक जगह है, रिक्वेस्ट या फरियाद करने का की भी एक जगह है। और हम ये सोच के चलते हैं कि हर जगह, हर बात में, हर समय हम एक ही स्टाइल में प्रार्थना करेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि कब रिक्वेस्ट करना है, कब अधिकार से प्रार्थना करनी है, कब मांगना है, कब परमेश्वर से रो रो के मांगना है? ये कैसे पता चलेगा? हमारे जीवन में इतनी सारी बातें होती है, होती है ना, इतनी सारी परिस्थितियां होती है। अब हर परिस्थिति के लिए कौन सी प्रार्थना है, अगर इसकी किताब लिखी जाए तो वो कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा, रेफरेंस बुक कहाँ मिलेगा आपको? इसके लिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, इसलिए आपसे कहा गया है कि आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, आत्मा में रहकर प्रार्थना करो। आपको आत्मा, पवित्र आत्मा बताएगा, पवित्र आत्मा प्रेरणा देगा, पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा ताकि आप प्रार्थना कर सको। तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होगी, तब हम परमेश्वर से सहमत होकर प्रार्थना करेंगे और तब हमारी प्रार्थना का जवाब आएगा। दो या तीन संडेज पहले मैंने आपको कहा था ना कि प्रार्थना करना मत छोड़ो। प्रभु ने हमें, पवित्र आत्मा ने हमें समझाया था ना कि यशायाह नबी के पुस्तक में से, कि परमेश्वर को चैन से बैठने मत दो, लेकिन वो काम आप आत्मा के द्वारा करेंगे। तो आज हम प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ी देर में प्रार्थना करेंगे कुछ विषयों को लेके, लेकिन ध्यान रखिए हम जल्दबाजी में प्रार्थना नहीं करेंगे। हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। लूका का सुसमाचार में 18वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक बार प्रार्थना के विषय में बता रहा था, और उस समय प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि, या अपने सुनने वालों को कहा, हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जब तक जवाब नहीं आता हमें धीरज रखना है और लगातार प्रार्थना करनी है। और उसमें प्रभु ने एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत बताया। एक जज था, एक न्यायी था, जो कि जिसके लिए लिखा है कि वो बहुत अच्छा इंसान नहीं था। और उसके पास एक विधवा आती थी और ये कहती थी कि मेरा न्याय चुकाओ, और वो कुछ नहीं करता था। लेकिन क्योंकि ये लगातार आती रही, उसके नाक में दम कर दिया। तो उसने कहा कि मैं वैसे परमेश्वर से डरता नहीं हूँ, ना मैं इंसान का आदर करता हूँ, लेकिन ये बुड्ढी जो है मेरे नाक में दम कर दिया है, तो मैं इसके लिए कुछ करूँगा। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से देखो कि वो न्यायी क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्योंकि ये बार बार मांग रही है, मैं इसके लिए काम करूंगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, अगर एक इंसान जो कि अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा इंसान है, वो एक दूसरे इंसान के बार बार मांगने से करने के लिए राजी हो जाता है, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा जब तुम दिन रात एक चीज मांग रहे हो? और उसमें क्या लिखा है, दोहाई लिखा होगा हिंदी में, तो वो भी एक प्रार्थना करने का तरीका है, सिर्फ बांधना और अधिकार दिखाना नहीं है, कई बार परमेश्वर की दुहाई देनी होती है, परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर से सहायता मांगना। और परमेश्वर ने कहा कि जो दिन रात यानी जो लगातार मांग रहे हैं उनके लिए परमेश्वर क्यों नहीं करेगा। तो प्रार्थना कई प्रकार की होती है और हम अपने दिमाग से निर्णय ले नहीं सकेंगे कि इस समय इस बात के लिए कैसी प्रार्थना करनी है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको बता सकता है। इसलिए मसीह लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा की सहायता लेना जरूरी है। इसका मतलब प्रार्थना के लिए थोड़ी सी तैयारी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप खड़े हो गए और एकदम कुछ बोला प्रार्थना हो गई, नहीं। प्रार्थना के लिए आपको आत्मा की सहायता चाहिए, आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हमें बांधने के समय बांधना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खोलने के समय में खोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो समय वो अवसर आपको कैसा पता लगेगा, पवित्र आत्मा बताएगा। आपको आत्मा में पता चल जाएगा कि इस समय इस जगह पर मुझे शैतान को बांधना चाहिए या दुष्ट आत्माओं को जो काम कर रही है बांधना चाहिए। आत्मा के द्वारा आपको पता चलेगा कि प्रभु ने मुझे जो अधिकार दिया है उस अधिकार के साथ अब मैं बोल सकता हूं या बोल सकती हूं। आत्मा की सहायता से आपको पता चलेगा कि इस बात में मुझे परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। आत्मा की सहायता से आपको पता चल जाता है कि इस बात में या इस संदर्भ में मुझे मुझे परमेश्वर से विनती करने की, फरियाद करने की जरूरत है। और आत्मा का ही सहायता से आपको पता चल जाएगा कि मुझे निवेदन करने की जरूरत है। इसका मतलब इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है ना, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, तब हमारी प्रार्थनाओं का हम जवाब देखेंगे, तब हमारी प्रार्थनाएं असरदार होगी। अधिकार से प्रार्थना करने से काम होता है, लेकिन सही जगह पर सही प्रार्थना होनी चाहिए। तो आज से हम अपना पुराने विचार को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहले हमने देखा है, सुना है कि चलो अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं हो जाएगा काम, नहीं, हम रुके रहेंगे, आत्मा से सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। उसमें चाहे हमें 30 मिनट लग जाए तो क्या हो गया, 30 मिनट के बाद अगर हम एक प्रार्थना करें जो बिल्कुल ठीक हो, जो बिल्कुल निशाने पे जाके लग जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, बजाय कि हम हर 5 मिनट में एक तीर छोड़े और कहीं ना लगे वो।